राजनीतिक सिद्धांत व्यवहारिक रूप में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत केवल पवित्र वायदे सोलम प्लेजेस तथा सजावट के चिन्ह पीसेस ऑफ डेकोरेशन मात्र ही नहीं अपितु आज तक इनको व्यवहारिक रूप देने के लिए निम्नलिखित अनेक कदम उठाए गए हैं। एक, जमींदारी की समाप्ति, एबोलिशन ऑफ जमींदारी। शताब्दियों से चली आ रही जमींदारी प्रथा को संविधान के पहले, चौथे, 70वें तथा 25वें संशोधन द्वारा समाप्त करने का यत्न किया गया है तथा बहुत सारे भूमि सुधार कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल के शामिल करके न्यायिक पुनर्निरीक्षण जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा प्रदान की गई है। दो, भूमि सीमा कानून, लैंड सीलिंग एक्ट्स। भिन्न भिन्न राज्य सरकारों द्वारा भूमि सीमा कानून पास करके भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई है तथा जमींदारी से प्राप्त की गई फालतू जमीन को भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया है। तीन, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी इज मेड लीगल राइट। संपत्ति का अधिकार निर्देशक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिए जाने के रास्ते में रुकावट था, जिसको 44वें संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। चार, मजदूर कल्याण के लिए उठाए गए कदम, स्टेप्स टेकन फॉर लेबर वेलफेयर। आज तक भारत में मजदूर कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे कि एक, काम करने के अधिकतम घंटे निश्चित किए गए हैं। दो, मजदूरियां निश्चित की गई हैं। तीन, काम करने के लिए उचित वातावरण कायम करने की व्यवस्थाएं की गई हैं। चार, बीमारी, बेरोजगारी तथा अपंग हो जाने की स्थिति में सुरक्षा प्रदान की गई है। पांच, स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए समान मजदूरियों की व्यवस्था की गई है। छह, बंधुआ मजदूरी को समाप्त किया गया है। सात, प्रसूति स्त्रियों को प्रसूति व्यवस्थाएं प्रदान की गई हैं। आठ, मजदूरों के लिए बीमा, डॉक्टरी सुविधाएं तथा भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। पेज 114। पांच, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सुविधाएं, फैसिलिटीज फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए अनेक प्रबंध किए गए हैं, जैसे कि एक, मुफ्त शिक्षा तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था। दो, तकनीकी तथा मेडिकल कॉलेजों तथा सरकारी नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था। तीन, संघीय संसद तथा राज्य विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था तथा अनेक सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्थाएं की गई हैं। छह, पंचवर्षीय योजनाएं। भारत के योजनाबद्ध विकास के लिए 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा योजना आयोग कायम किया गया, जो कि सारे भारत के संतुलित विकास के लिए योजनाएं बनाता है। अब तक हम 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर चुके हैं, जिन्होंने देश के सर्वांगीण विकास में उचित योगदान दिया है। सात, राष्ट्रीयकरण की नीति, पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। संपत्ति को कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होने से रोकने के लिए सरकार ने बीमा कंपनियों, बैंकों, कोयलों की खानों, तेल कंपनियों आदि का राष्ट्रीयकरण किया है, ताकि इनका प्रबंध सुधारा जा सके तथा इनसे प्राप्त लाभ को आम जनता की भलाई के लिए प्रयोग किया जा सके। आठ, निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 1 अप्रैल 2010 से भारत सरकार द्वारा समस्त भारत में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने संबंधी व्यवस्थाएं की गई हैं और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 9, नशाबंदी, प्रोहिबिशन। भारत में नशीले पदार्थों के प्रयोग को सीमित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और अनेक राज्यों में वहां की सरकारों द्वारा नशाबंदी को लागू किया गया है, जिसकी समाज के विभिन्न वर्गों और विशेषतः स्त्रियों द्वारा सराहना भी की गई है। 10, पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के अधीन गांवों के विकास के लिए तथा शक्तियों के ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रीयकरण के लिए पंचायती राज्य की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायतों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए वर्तमान कानून में उचित संशोधन किए जाने का विश्वास दिलाया था। सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की कार्यविधि को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य को मुख्य रखकर संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया है। इन संशोधन कार्यों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। 11, स्त्रियों का सम्मान तथा समान अवसर, रिस्पेक्ट फॉर वुमन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए स्त्रियों को पिता की संपत्ति में समान अधिकार, बेसहारा स्त्रियों को बसाने के लिए सुविधाएं, सती विरोधी कानून, वैश्या जीवन की कानूनी समाप्ति तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसरों की व्यवस्थाएं की गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय संस्थाओं में स्त्रियों के लिए 50% तक सीटें सुरक्षित रखे जाने की उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। 12. कृषि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि की आधुनिक विधियों के विकास के लिए नई तकनीकी जानकारी, नए औजार, नए बीज तथा नई खादों आदि की व्यवस्था की गई है। कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज स्थापित किए गए हैं। किसानों को ऋण की सुविधाएं दी गई हैं। गांवों में सिंचाई तथा बिजली की सुविधाओं का विशेष प्रबंध किया गया है। 13. पशुओं की नस्ल का सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ब्रीड ऑफ एनिमल्स। पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए अलग विभाग स्थापित किया गया है। 14. लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा विशेष यत्न किए गए हैं। भिन्न भिन्न राज्यों द्वारा खादी तथा कुटीर उद्योग, खादी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज कमीशन स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास करना है। 15. समरूप दीवानी कानून, यूनिफॉर्म सिविल लॉज। सरकार द्वारा सारे भारत के लिए समरूप दीवानी कानून बनाने के लिए आयोग स्थापित किया गया है, जिसकी सिफारिशों पर बहुत सारे समरूप कानून पास भी किए गए हैं। पेज 115। 16. न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग रखा जाना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। रिपीट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए इसको कार्यपालिका से अलग किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में वे सभी व्यवस्थाएं भी की गई हैं जो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए आवश्यक है। 17. ऐतिहासिक महत्व के स्थानों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। भारत में बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षित घोषित किया गया है तथा उनकी सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई हैं। 18. अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए उठाए गए कदम, स्टेप्स टेकन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित संविधान की धारा 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के विकास को भारत का उद्देश्य घोषित किया गया है और संविधान के लागू किए जाने से लेकर आज तक समय समय की सरकारों द्वारा अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनका उद्देश्य विश्व शांति का विकास करना है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। भारत के यत्नों से अनेक देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने हैं और भारत द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में पैदा होने वाले विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। भारत द्वारा पड़ोसी राज्यों के साथ पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं और विश्व के विभिन्न देशों के साथ शांति संधियां की गई हैं। आज भी भारत के सैनिक संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में शांति स्थापना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आदि। 19. संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए पहला, चौथा, 70वां, 25वां, 42वां तथा 44वां आदि अनेक संशोधन किए गए हैं। 25वें संशोधन द्वारा तो धारा 39B तथा सी में सम्मिलित निर्देशक सिद्धांतों को धारा 14, 19 तथा 31 में शामिल मौलिक अधिकारों पर श्रेष्ठता प्रदान की गई है। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 20. शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। राइट टू एजुकेशन इज मेड फंडामेंटल राइट। दिसंबर 2002 में संविधान में किए गए 86वें संशोधन 86th अमेंडमेंट के अनुसार शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया गया है और 4 अगस्त 2009 को संसद द्वारा बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 पास करके इस अधिकार को व्यवहारिक रूप प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसे 1 अप्रैल जिसे 1 अप्रैल 2010 से समस्त भारत में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित धारा 45 को व्यवहारिक रूप देना है। स्मरण रहे, धारा 45 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। शिक्षा के अधिकार को व्यवहारिक रूप दिए जाने के उद्देश्य को मुख्य रखकर संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पास किया गया था, जिसे 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। 21 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अगस्त 2005 में सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पास किया गया था, जिसका उद्देश्य गांवों में रहने वाले बेरोजगार लोगों को वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान करना है, और यदि सरकार रोजगार प्रदान करने में असमर्थ रहती है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह योजना 2 फरवरी 2006 को भारत के विभिन्न राज्यों के 200 जिलों में लागू की गई थी और 1 अप्रैल 2008 को यह योजना सारे भारत में लागू की गई है। लोगों को रोजगार प्राप्त किए जाने की दिशा में सरकार का यह एक क्रांतिकारी कदम है। 22 माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और कल्याण मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। सरकार द्वारा वृद्ध माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और उनके कल्याण के लिए कानून पास किया गया है, जिसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि जो बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करते उन्हें 3 महीने की सजा दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त कानून के अंतर्गत वृद्ध घरों ओल्ड एज होम्स की स्थापना की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं वे वृद्ध घरों में जीवन व्यतीत कर सके। पेज 116। 23 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सितंबर 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। 2 सितंबर 2013 को संसद द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम फूड सिक्योरिटी बिल पास किया गया था, जिस पर राष्ट्रपति द्वारा 13 सितंबर 2013 को अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी गई थी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के प्रति व्यक्ति प्रति मास 5 किलो चावल अनाज और मोटा अनाज 3 रूपये, 2 रूपये और 1 रूपये प्रति किलो के हिसाब से दिए जाने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का उद्देश्य भारत की 70% के लगभग जनसंख्या को भूखमरी से मुक्ति दिलाना है और भूख के विरुद्ध लड़ने की विश्व की यह सबसे बड़ी योजना है। अतः इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्देशक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिए जाने की दिशा में काफी कुछ किया गया है, परंतु अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।